ओम शांति। हम सबके समक्ष आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी पहुंचे हैं, जिनका आप सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। आप जिस्मानी डॉक्टर और रूहानी डॉक्टर दोनों हैं। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से सन 1989 में MBBS की डिग्री हासिल की। 1974 में ही संस्था के संपर्क में आए और 1989 में ही ईश्वरीय सेवा में आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। प्रारंभ में आप राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात कुछ समय इंदौर में रहने के बाद माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। 2001 से दादी प्रकाश मणि जी, जो ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका थी, के व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में सेवा देने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्तमान में राजयोग शिक्षिका एवं महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन में स्वास्थ्य के प्रति जागृति लाने के लिए अनेक स्वास्थ्य मेलों एवं स्वास्थ्य अभियानों में भाग लिया, साथ साथ अनेक विषयों पर सम्मेलनों में व्याख्यान देती हैं, जैसे तनाव मुक्त जीवन, क्रोध प्रबंधन, स्वस्थ जीवन शैली, मेडिटेशन, एज मेडिसिन आदि आदि। विश्व में स्वास्थ्य एवं आध्यात्म की अलग जगाने के लिए आपने विदेशों जैसे अमेरिका एवं UK की यात्रा भी की और आज आपकी क्लास का विषय है संतुष्टता। हम सब सुनते आए गोधन गजधन वाजीधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। भले लोग कहते हैं, लेकिन बाबा ने जो संतुष्टता की परिभाषा बताई, आज वही संतुष्टता के विषय पर आदरणीय डॉक्टर सविता बहन क्लास कराएंगी।
बाबा, हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाते हैं और उन सभी गुणों में विशेष गुण, या जिसे कहें सभी गुणों का राजा, वो संतुष्टता है। संतुष्टता को बाबा ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बाबा का विशेष वर्षा है और उसकी प्राप्ति है प्रसन्नता। जो संतुष्ट होगा वो प्रसन्न जरूर होगा। संगम युग में संतुष्टता सर्व प्राप्ति के आधार पर है। भक्ति में तो आपने सुना क्या कहते हैं, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, यानी संतोष का गुण जब आ जाता है तो उस धन के आगे और सब धन धूल के समान है, इतना ऊंचा और श्रेष्ठ है। लेकिन बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता का आधार क्या है, जो पाना था वो पा लिया, यानी अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में। सर्व प्राप्तियां हैं, क्योंकि जिस भगवान को पाने के लिए हम दो कल्प दो युग तक प्रयास करते रहे, वो स्वयं भाग्य विधाता ही अपना हो गया, तो सारे भाग्य हमारे हो गए। भगवान में ही पूरा संसार और सब वैभव समाये हुए हैं। तो जब ये अनुभव हमें हो जाता है कि सर्व प्राप्तियां हमें हो गई, वो अविनाशी प्राप्तियां हैं, अब और कुछ पाना बाकी नहीं रहा। दुनिया की प्राप्तियां हद की प्राप्तियां हैं, विनाशी प्राप्तियां हैं, और यदि मन बुद्धि उसमें ही रहती है तो हम बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब बेहद की प्राप्ति में हमारी मन बुद्धि रहती है, जब वो हमारी स्मृति में रहती है, तो फिर हम संतुष्ट रहते हैं। जो प्राप्ति संपन्न होते हैं वो भरपूर होते हैं, और जब हम भरपूर होते हैं तो फिर हमारी आंख कहीं और नहीं जाती है। जैसे हम कहेंगे कि अगर हमने भरपेट भोजन किया है और मन पसंद भोजन किया है, और फिर उसके बाद आकर के कोई हमें कहे कि आप ये और खाओ, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, पेट भरा हुआ है, भी जगह नहीं है, भरपूर है, तो संतुष्ट है। लेकिन अगर भूख है तो फिर हमें चाहिए। तो यहां भी बाबा ने हमें संतुष्टता का आधार दिया है, सर्व प्राप्ति संपन्न की अनुभूति कितनी है। अब भगवान ने तो सबको एक जैसा दिया है, किसी को 10 गुना दिया है या किसी को 50 गुना दिया है। हमारी दादियां हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उनको पूरा 100% बाबा ने दिया है, और हम अभी नए आए हैं, हमें कुछ साल ही हुए हैं ज्ञान में, तो बाबा ने हमें उनकी भेंट में 20% दिया है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है, सभी को एक ही द्वारा, एक ही जैसा और एक ही समय पर सर्व प्राप्ति है। लेकिन बाबा कहता है कि उस प्राप्ति को यूज करना और उसे धारण करना, उसमें नंबर बन जाते हैं, क्योंकि धारणा का आधार हम स्वयं हैं। भगवान सिर्फ हमें स्मृति दिला देते हैं, देखो आप इतने श्रेष्ठ आत्माएं हो, आप इतनी संपन्न आत्माएं हो, और जो अविनाशी खजाने हैं वो इस जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर भी हमारे साथ चलने वाले हैं। 21 जन्म और उससे भी आगे बाबा कहता है सर्व भाग्य संपन्न हम आत्माएं रहने वाली हैं। सर्व भाग्य कौन से हैं? तन, मन, धन और संबंध। सर्व प्राप्तियों में ये 4 भाग्य ही आते हैं। तन की प्राप्ति होनी चाहिए। तन की प्राप्ति में माना जाता है सुंदर और स्वस्थ तन हो। मन की प्राप्ति में माना जाता है सदा मेरा मन चिंता मुक्त, शांत, प्रसन्न रहे। धन की प्राप्ति में माना जाता है कि इतना धन अवश्य हो कि इंसान को किसी भी आवश्यकता के लिए संघर्ष न करना पड़े, सारी आवश्यकताएं सहज पूरी हो जाएं। कम से कम ब्राह्मण जीवन में तो हम ऐसा ही सोचते हैं, चलो दुनिया वाले तो धन के लालच के पीछे भागदौड़ की जिंदगी जीते हैं। कहते हैं दुनिया वाले तो पेट भरने के लिए नहीं कमाते, पेटियां भरने के लिए कमाते हैं। और संबंध का भाग्य, सर्व श्रेष्ठ संबंध हो, सदा निस्वार्थ स्नेह देने वाले हों, समय पर सहयोग देने वाले हों, तो ये सारे भाग्य हमें अभी भी मिले हैं और भविष्य में भी अनेक जन्मों तक तो गारंटी है। लेकिन वर्तमान में ये सर्व प्राप्तियां बाबा के आधार से हैं, और वो बाबा के आधार से कैसे हैं? यदि हम उसके स्मृति स्वरूप रहते हैं तो कभी भी हम असंतुष्ट नहीं हो सकते। और बाबा कहता है जो संतुष्ट है वो स्वयं से भी संतुष्ट होगा, वो पाप से भी संतुष्ट होगा, वो ड्रामा से भी संतुष्ट होगा, और संबंध संपर्क में भी संतुष्ट होगा। हम इन 4 बातों में कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो जाते हैं, स्वयं ही स्वयं से असंतुष्ट होते हैं, वो है अपने पुरुषार्थ से। बाबा की श्रीमद् प्रमाण में अपने संस्कार को नहीं परिवर्तन कर पा रही हूं, तो हम स्वयं से असंतुष्ट हो जाते हैं। या बाबा ने ड्रामा में मेरा भाग्य ऐसा बनाया, बाप से असंतुष्ट, या ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा क्यों है, मैं ड्रामा से असंतुष्ट। अब पार्ट में तो कई बातें होती हैं, ऐसे ही संबंध संपर्क में आते हैं तो आत्माओं के स्वभाव संस्कार से असंतुष्ट। पर बाबा ने हमें ये सारे राज समझाए हैं, और जो राजों को समझता है वो कभी नाराज नहीं होता। असंतुष्ट हम कब होते हैं, जब हमें ये ज्ञान के राज स्मृति में नहीं रहते। और जो संतुष्ट होता है उसकी निशानी है वो सदा ही निस्वार्थ होगा और निर्दोष होगा। जो निस्वार्थ है यानी जिसको बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले हैं, जिन्हें हद की इच्छाएं नहीं है। एक इच्छा शुभ इच्छा जरूर है, और वो इच्छा है मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाऊं। अगर वो चिंता लगती है तो बाबा उसकी छुट्टी देता है। लेकिन जो संसार की हद की इच्छाएं जिन्हें हम कहते हैं, उसमें निस्वार्थ और किसी पर भी दोष नहीं रखें, ना ड्रामा पर कि ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा क्यों बनाया, ना बाबा पर, ना बाबा से भी हम कई बार असंतुष्ट हो जाते हैं, ना बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या फिर अन्य आत्माओं से कि इसके स्वभाव संस्कार ऐसे क्यों हैं। तो जब हम प्रश्नचित्त हो जाते हैं यानी दूसरों को हम दोष देने लगते हैं, तो फिर हम असंतुष्ट हो जाते हैं। तो जो भी प्राप्तियां हमें हुई हैं बाबा के द्वारा, उन प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप बनना, केवल स्मृति नहीं लेकिन उसके स्वरूप बनना, ये सारे हमारे जो असंतुष्टता के कारण हैं उनको वो समाप्त कर देता है। तो सबसे पहले तन की प्राप्ति है। बाबा कहता है कि भले ही हमारे तन संगम युग पर पुराने हैं, अन्य जन्मों में जो तन मिलेंगे वो तो सतयुग से नया तन होगा, वो निरोगी काया होगी, लेकिन वर्तमान समय का जो तन है वो सबकी निरोगी काया तो नहीं है, क्योंकि ये तो पांच तमो प्रधान तत्वों से बने हुए शरीर हैं, और इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी लगती रहती है। हम सभी बैठे हैं, मैं समझती हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि यदि हम बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, अब दो बातें हैं, एक तन का बीमार होना और एक होता है मन का बीमार होना। तो तन की बीमारी मन को बीमार ना करे, यानी आत्मा अगर स्वस्थ है, और वो आत्मा स्वस्थ तब रह सकती है जब बाबा के साथ योग है। और यदि हमारा मन स्वस्थ है तो वो तन की बीमारी को भी सूली से कांटा कर देता है, यानी कर्म भोग को हम कर्म योग से सहज चुकतू कर लेते हैं। बीमारी हमें बड़ी महसूस नहीं होती है, कई बार बड़ी बीमारी होती भी, ऐसे नहीं कि हमेशा छोटी छोटी बीमारियां ही होती हैं। कई बार ऐसी आजकल कलयुग में बड़ी बीमारियां होती हैं जिसके साथ जिंदगी भर जीना पड़ता है, एक बार लग गई माना उम्र भर वो बीमारी चलेगी। तो उसमें जैसे मानो डायबिटीज हो गई किसी को, अस्थमा हो गया, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई हार्ट की बीमारी हो गई, या कैंसर की बीमारी हो जाती है, कई ऐसी बीमारियां हैं जो लग गई माना लग गई। लेकिन बीमारी हो गई उसके साथ बीमारी कॉन्शियस नहीं होना कि मैं बीमार हूँ। हाँ, अब हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे, अब हम कैसे सेवा करेंगे, नहीं, बीमारी आई है, ये हिसाब किताब सारे इसी समय छुपतू होने हैं, ये विदाई लेने आई है। जो बाबा ने हमें उसका राज समझाया है कि सभी हिसाब किताब अभी ही खत्म करके फाइनल उनको विदाई देना है। तो साक्षी भाव से अपने तन का हिसाब किताब हम चुकतु करें, कर्म योगी बन करके हम उसको चुकतु करें। और फिर बाबा कहता है कलयुग में ये अलग अलग पैथियां निकली हैं, इतने सारे जो इलाज निकले हैं वो क्यों निकले हैं, इसीलिए निकले हैं। बाबा कहते हैं ये कलयुग के सीजन का फल है कि अगर शरीर अस्वस्थ होता है तो उसके लिए अब आपको जो पैथी सूट करती है, अगर होम्योपैथिक सूट करती है, आयुर्वेद सूट करता है, एलोपैथिक सूट करती है, कितनी पैथीज हैं, जो पैथी सूट करती है वो दवाई खाओ, लेकिन दवाई भी मजबूरी से नहीं खाना है। हाँ ये मेरे को इतनी दवाई खानी पड़ रही है, तो अगर मजबूरी से खाएंगे तो दवाई उतना काम नहीं करेगी, लेकिन उस दवाई को कैसे खाना है, उस दवाई को भी फ्रूट समझ के खाना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था ये भी कलयुग का फ्रूट है, शक्तिशाली फल है, और ये मैं शरीर को शक्ति देने के लिए खा रही हूँ बाबा की याद में, अगर उस तरह से उस दवाई को खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सूली से कांटा होने का मतलब क्या है कि अगर वो बीमारी एक महीने में जाने वाली है तो आपकी बीमारी 15 दिन में चली जाएगी, या कम दवाई में जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें मन को स्वस्थ रखना है, आत्मा को बाबा की याद से स्वस्थ रखना है, बीमारी में भी सोल कॉन्शियस रहना है ना, बॉडी कॉन्शियस में बीमारी कॉन्शियसनेस में नहीं आना है। ये विधि बाबा ने हमें बीमारी में भी प्रसन्न रहने की सिखाई, और इसीलिए हम देखते हैं जो भी हमारे बड़े हैं, ये पेपर तो सभी के सामने आते हैं, तन का पेपर तो सभी के सामने आता है, लेकिन कभी भी बीमारी का प्रभाव मेरे चेहरे पर ना आए। राजयोगी माना सदा संतुष्ट सदा प्रसन्न, सदा प्रसन्न चित्त वाले। फिर मन की बात, हम जब स्वयं के पुरुषार्थ से असंतुष्ट होते हैं, बाबा की याद में बैठे हैं तो मन को सेट करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर तो मन सेट हो जाता है जिस स्थिति में मन को ले जाना चाहते हैं योग में, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर अपसेट हो जाते हैं। मन भी एक बच्चे की तरह है, जैसे बच्चे को आप कहीं बिठाएंगे तो थोड़ी देर तो बैठ जाएगा लेकिन फिर वो हलचल ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमारा मन भी इसी तरह से करने लगता है। तो एकाग्रता का अभ्यास और दृढ़ता का अभ्यास, दृढ़ता पूर्वक एकाग्रता का अभ्यास यदि हम अपने मन को देते हैं तो फिर स्वयं के पुरुषार्थ में हम जो स्थिति अनुभव करना चाहते हैं वो हम सहज कर सकते हैं। और मानव पुरुषार्थ में कोई स्वभाव संस्कार हमारे विघ्न रूप बनते भी हैं तो हमें पता है संस्कार कड़े हैं, और बाबा ने भी हमें समय दिया है इसीलिए, क्यों संगम युग 100 साल का हम कहते हैं, तो बाबा ने हमें क्यों समय दिया है, क्योंकि बाबा को भी पता है कि हमें उन संस्कारों को पूरी तरह परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगता है। तो इस बात को लेकर के एकदम असंतुष्ट न हो जाएं, मेरे तो संस्कार बदलते ही नहीं है, नहीं आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हमने बदला था और आज भी हम बदल रहे हैं, बदल ही जाएंगे, बाप साथ है तो निश्चित विजय है ही है। कभी भी अपने अंदर जो विश्वास है, बाबा कहता है अपने आप में जो निश्चय है उस निश्चय को कभी भी हमें कम नहीं होने देना है। तो स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट रहेंगे, कभी किसी परिस्थिति के कारण अमृत वेला ऊपर नीचे हो गया तो सारा दिन हम उस बात को लेकर पश्चाताप करते रहे, नहीं समस्या को नहीं सोचना है, लेकिन अब आज जो हो गया तो हो गया, कल मेरा अमृत वेला पावरफुल कैसे हो उसके बारे में सोचना है। कई बार हम समस्याओं का चिंतन ज्यादा करते हैं लेकिन भविष्य में उससे आगे कैसे बढ़ना है ये नहीं सोचते हैं, तो व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा चले जाते हैं। फिर जहां धन की बात आती है, तो जैसे हमने धन की बात की, ब्राह्मण जीवन में हमारी आवश्यकताएं सहज पूरी होती हैं। बाबा कहता है कि हमें बहुत धन कमाई के पीछे जाना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम ज्यादा धन के पीछे जाएंगे तो हमारा समय संकल्प शक्ति कहाँ ज्यादा लग जाएगा, धन कमाने के पीछे लग जाएगा, और ये विनाशी कमाई हमारे साथ नहीं जाने वाली है। जो हम अविनाशी कमाई कमा रहे हैं, जो हमारी ज्ञान धन की कमाई है, जैसे कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपए का है, उसे हमने जीवन में कितना समाया है, बाबा के ज्ञान का हम कितना स्वरूप बने हैं, उससे हमारे जीवन में गुणों की धारणा, शक्तियों की धारणा कितनी हुई है, वो कमाई हमारी जन्म जन्मांतर की कमाई, उसमें हमें समय देना है, ना कि विनाशी धन की कमाई के पीछे हमें समय देना है। कई बार बाबा ऐसे भी कहते हैं, अगर आपके पास इतना धन है, ड्रामानुसार कई इतने धनवान भी होते हैं कि जीवन भर अगर बैठ करके खाएं आराम से खा सकते हैं, तो अगर ये भाग्य है संगम युग पर, तो फिर बाबा कहता है आराम से आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लग जाओ, ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, अपना पूरा समय इस कमाई में लगाओ, क्योंकि वो विनाशी कमाई करने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया वालों जैसी हमारी इच्छाएं हो, दुनिया वालों की इच्छाएं क्या होती हैं, एक बंगला है उसे संतुष्ट नहीं है, एक दूसरा बंगला भी हो जाए, एक बेटे के लिए भी और बना ले, एक कार है घर में उसे संतुष्ट नहीं है, एक और नए मॉडल की कार, या कहेंगे एक मोबाइल है उसे संतुष्ट नहीं है, अभी जो लेटेस्ट मॉडल बाजार में आया है उसको क्या कहेंगे, हद की इच्छाएं, बाबा इसको हद की इच्छाएं कहता है। तो ब्राह्मण होकर के भी अगर मेरा मन हद की इच्छाओं के पीछे भाग रहा है अभी भी, तो दुनिया में भी ऐसा होता है, बहुत धनवान होते ना, बहुत कुछ कमा लिया तो भी संतुष्ट नहीं होते। एक कहानी आती है कि एक गांव में एक सेठ रहता था, तो बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ था उसका, उसके खेत भी थे, और उसकी हवेली के पास में ही एक किसान रहता था जो उसके ही खेत में मजदूरी करता था। तो वो सेठानी देखती थी कि ये जो किसान रहता है हमारी हवेली के पास, कितना खुश कितना मस्त रहता है, दोनों काम करते हैं खुश रहते हैं, और मेरे पति इतने बड़े व्यापारी हैं, इतना कमाते हैं, फिर भी हम दोनों खुश नहीं हैं, कोई ना कोई बात की चिंता हमें लगी ही रहती है, क्योंकि जितना बड़ा धंधा होगा उतनी ही बड़ी उसकी चिंताएं भी होंगी, ऐसे ही होता है। तो उसने एक बार अपने पति को कहा कि देखो इससे तो हम ये गरीब अच्छे हैं, कम से कम खुश तो रहते हैं, हम इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं फिर भी खुश नहीं है। तो किसान ने कहा कि इसका कारण है कि इनको 99 का फेर नहीं लगा है। तो उसको समझ में नहीं आया, उसने कहा ये 99 का फेर क्या होता है। तो उसने कहा अच्छा मैं समझाऊंगा क्या होता है। तो वो सेठ ने वो एक छोटा पॉकेट दिया सेठानी को और उसमें 99 रुपए डाले और कहा कि ये किसान के घर जाकर के उसको देना, उसको कहना आप इतनी मेहनत करते हो, ये आपका इनाम है। उसने कहा ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो ले गए और उसके घर में ना उसको किसान की पत्नी को दिया, कहा आप दोनों इतना मेहनत करते हो खेती में, इतनी अच्छी खेती होती है, तो ये सेठ जी की तरफ से आपको इनाम है। तो उसने पैसे गिने तो वो 99 रुपए थे, 100 में एक कम था। तो अब क्या हुआ, दोनों ने मिलकर सोचा कि देखो भगवान ने खुश होकर के हमें ये 99 रुपए दिए, आज तक तो हमने कभी बचत की नहीं, हम जो कमाते हैं खाते हैं, तो आज ये 99 रुपए हमारे पास आए हैं, तो क्यों ना हम एक रुपया और जोड़कर इसे 100 बना लें। तो वो थोड़ी और मेहनत करने लगे और थोड़े दिनों में एक रुपया तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कमा लिया और उनके रुपए 100 हो गए। लेकिन जैसे ही 100 रुपए हुए थोड़ा और लालच मन में आ गया कि ये 100 के 500 हो जाएं तो, क्योंकि 100 होने से खुशी हुई उनको, तो उनको लगा 100 के 500 हो जाएंगे तो कितनी खुशी होगी। तो अब जो वो आराम से कमाते थे और अपना समय लगाते थे बाकी भगवान के ध्यान में खुश रहते थे, अब ज्यादा ज्यादा समय किसके पीछे लगाने लगे, वो 100 के 500 कैसे हो जाएं, और सारा जब संकल्प समय उसमें लगने लग गया तो खुशी गुम। तो थोड़े समय के बाद ही वो सेठानी ने देखा कि ये जो किसान का परिवार इतना खुश रहता था, आजकल इतना खुश नहीं दिखाई देता है। तो उसने वो सेठ जी को बात कही कि पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, ये तो बहुत खुश दिखते थे, आजकल तो इतने खुश नहीं दिखाई देते हैं। तो सेठ जी ने उनको कहा कि देखो, तुमने जो 99 रुपए दिए ना, वो उस फेर में आ चुके हैं। तो इंसान जब धन के फेर में आता है तो फिर वो संतुष्ट नहीं रहता, खुश नहीं रहता है। तो यहाँ बाबा हमें यही कहते हैं कि आपको बाबा लखपति करोड़पति नहीं बनाएगा, भगवान गरीब निवास है। आप सोचो कि बाबा को याद करके मैं करोड़पति हो जाऊं तो क्या होगा, करोड़पति हो जाएंगे या मायापति हो जाएंगे, माया खींच कर ले जाएगी आपको, क्योंकि धन के साथ साथ माया भी आती है। तो इसीलिए संगम युग में हम गरीब हैं, इसका मतलब बहुत भाग्यवान है कि हमें भगवान ने अविनाशी कमाई करने का भाग्य दिया है। तो धन की संतुष्टता हमारी वो धन से नहीं है, हमें इस राज को समझना है कि वो धन ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आ जाए, साधन ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आ जाए, उससे नहीं, लेकिन अविनाशी धन से हमारी संतुष्टता है। उसकी स्मृति में है ना, उसके स्मरण में हम कितना रहते हैं, यानी ज्ञान के जितने स्मरण में हम रहेंगे, जिसको कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, जो स्मृति स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, उतना ही हम ज्यादा से ज्यादा संगम युग में कमाई करके धनवान होते जाते हैं। और संबंधों की बात बाबा कहता है, तो संबंधों में पहले हैं हमारे बाबा से संबंध, जो सर्व संबंध है, और बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव इस दुनिया में संबंधों में जो कमी है उसको पूरा कर देता है। कोई को कोई संबंध प्यारा होता है, कोई को कोई संबंध प्यारा होता है। कई बार ऐसे होता है किसी को माँ नहीं होती है, किसी को बाप नहीं होता है, किसी को भाई नहीं होता है, किसी को बहन नहीं होती है, होती है ना, कोई कोई कमी होती है संबंध में, अच्छा दोस्त नहीं है। अब वही संबंध मैंने बाबा के साथ अनुभव किया तो मुझे वो कमी कभी भी नहीं महसूस होगी। कईयों के ऐसे होते हैं कि मेरा जवान बेटा है, उसने शरीर छोड़ दिया, तो क्या बाबा बेटा हो सकता है? उसी संबंध का जो कमी मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ, वही संबंध हम बाबा से अनुभव करें। किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया तो बाबा तो कहता है कि साजन का भी साजन है, वो पतियों का भी पति है, उस अविनाशी साजन से उस साजन का संबंध हम अनुभव कर लें। भाई नहीं है तो भाई का संबंध अनुभव कर लें। तो जो असंतुष्टता हमें सांसारिक संबंधों से आती है उसको हम सहज अनुभव बाबा से कर सकते हैं। फिर संबंधों में जो हम असंतुष्ट होते हैं उनके स्वभाव संस्कार से, किसी को मैंने कोई बात समझा दी, इतनी बार समझा दी लेकिन फिर भी वही गलती कर रहे हैं, या इनके ये अवगुण देख करके जैसे मन में नफरत पैदा होती है, ये ऐसा काम करते हैं। कई बार हम अज्ञानियों को तो बहुत आसानी से माफ कर देते हैं क्योंकि उनकी हमें सेवा करनी होती है, तो उनके 35 अवगुण भी होंगे और एक ही गुण होगा तो भी वो हमें बुरे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर कोई ज्ञानी, उसके अंदर 35 गुण है और एक ही अवगुण है तो भी मुझे क्या दिखाई देता है, बार बार वो एक अवगुण मुझे ज्यादा दिखाई देने लगता है। तो हम दूसरों के संस्कारों को जब देखने लगते हैं तो बाबा कहता है उसे तो वो छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है आत्मा, वो आत्मा भी तो जानती है ना मेरी ये कमी है, तो वो खुद उसे छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, और अगर मेरी नजर उस पर है तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको धारण कर रही हूँ। गुण ग्राहक बनने की बजाय हम कौन से ग्राहक बन रहे हैं, अवगुण ग्राहक बन रहे हैं ऐसे ही कहेंगे तो असंतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, किसी का किचरा मैं अपने अंदर डाल रही हूँ। लेकिन हमें ये समझना है कि मेरे भी कुछ संस्कार हैं, चलो वो वाला संस्कार मेरा नहीं है पर मेरा कोई दूसरा संस्कार होगा, तो जब मैं अपने संस्कारों को दूर करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ और मुझे भी अपने संस्कारों को चेंज करने में टाइम लगता है तो उस आत्मा को भी टाइम लग रहा है। तो हम उसे ज्ञान की नजर से समझें, और जब हम इस दृष्टि से संबंध संपर्क में आएंगे तो किसी भी आत्मा की कमियों से हम असंतुष्ट नहीं होंगे। और फिर बाबा कहता है हम बाबा के बच्चे रहमदिल हैं, जैसे बाबा प्रेम का सागर है हम बच्चे कौन हैं, मास्टर प्रेम के सागर हैं। तो अगर हम रहमदिल हैं और कोई आत्मा के तमोगुणी संस्कारों के वश है, वो माया के वश है, कई बार होता है बाबा कहते हैं कई बार महारथी भी, जिनको आप महारथी समझते हो, कभी कभी वो भी ऐसे संस्कारों के वश हो जाते हैं, तो भी मेरा कर्तव्य क्या है उस समय उस आत्मा को सहयोग देना, ना कि उसके प्रभाव में आ जाना। और प्रेम के सागर है माना ऐसे समय पर भी उस आत्मा के प्रति मेरा प्रेम कम नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान का प्रेम, हम कितनी गलतियां करते रहते हैं, हमारे से कम हो जाता है, इसीलिए हम भगवान को कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। तो भगवान से तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि मेरे एक भी अवगुण को अपने चित पर नहीं धरो, तो हम भी तो मास्टर भगवान बनाया है ना बाबा ने, अपने ही समान बनाया है, तो फिर दूसरों के अवगुण को भी मुझे चित पर नहीं धरना है। तो प्यार का लोटा नहीं बनना है, एक मुरली में बाबा ने कहा प्रेम की सागर की बजाय क्या बन जाते हैं, प्रेम का लोटा बन जाते हैं, तो लोटा तो जल्दी पानी खत्म हो जाता है। तो ये अपने आप को स्मृति दिलानी है कि जब हम ऐसे संबंधों में आते हैं तब मेरा कर्तव्य क्या है। ज्ञानी तो आत्मा होने के नाते मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, बाबा का सहयोगी बनना है। ऐसे कहते हैं ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तो जो फूल हैं माना गुणवान है, उनसे तो नेचुरल प्यार होता है ना, उनसे प्यार करने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरल स्नेह होता है उन आत्माओं के प्रति क्योंकि इतने गुण हैं उनके अंदर। लेकिन कांटों से प्यार करना माना, कांटे माना जो दुख देने वाली आत्माएं हैं, जो आपको दुख देने के निमित्त बार बार आपके सामने हिसाब किताब चुकतू करने आ जाती है। कई आत्माएं ऐसी भी होती हैं क्योंकि उनके साथ ही आपको रहना है, और ऐसा कड़ा हिसाब किताब होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो बच नहीं सकते हैं उससे। तो बाबा कहता है कैसी भी आत्मा मेरे सामने हिसाब किताब चुकतू करने आती रहे, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट रह सकती हूँ, तब कहेंगे कांटों से भी प्यार। नहीं तो फूलों से तो प्यार करना बहुत सहज है। तो जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत अनुसार मुझे संतुष्ट रहना है। फिर ये तो जो स्थूल प्राप्तियां हैं उसके साथ साथ सूक्ष्म प्राप्तियों की बात भी हम करते हैं। दुनिया में सूक्ष्म प्राप्तियां मानी जाती हैं, मेरा अच्छा नाम हो, लोग मुझे मान दें, मतलब मुझे भी कुछ माने, मैं भी कुछ हूँ, या शान हो, हमारी अच्छी शान हो, जिसको नाम मान शान हम कहते हैं। तो यहाँ भी कई बार ऐसा होता है, कई बातों में हमको पूछा ही नहीं जाता, मतलब मेरा नाम ही नहीं लिया गया। बाबा की सेवा तो हम भी कर रहे हैं, सारा दिन हम सेवा में लगे हुए हैं सुबह से रात तक, लेकिन बहन जी ने तो मेरा नाम ही नहीं लिया। नाम ले रहा तो छोड़ो, मुझे तो पूछा भी नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है मानो, तो फिर हम असंतुष्ट हो जाते हैं। या बाबा कहता है इस हद के नाम में मुझे नहीं जाना है, मानो कोई कारण से मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम होना चाहिए, हम समझते हैं कि इन बातों में मेरा नाम आना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारण से मेरा नाम नहीं आया, या कोई आत्मा के हिसाब किताब के कारण मेरा नाम नहीं आता है। तो बाबा कहता है कि बाबा के दिल में आपका नाम पहले है और आप बाबा के गले का हार बनने वाले हैं, यानी विजय माला में आपका नाम आएगा। देखो अभी भी बाबा मुरली चलाते हैं ना, जब अब अव्यक्त मुरलियां चलती हैं, तो बाबा हर मुरली में क्या कहते हैं, हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में कौन समाया हुआ है, बच्चे समाये हुए हैं। तो हमारा नाम बाबा के दिल में, हमारा नाम कौन जपता है, भक्त तो भगवान को जपते हैं, पाया नहीं है लेकिन जपते हैं, इतना नाम जपते हैं उसका। हाँ, लेकिन हमारा नाम कौन जपता है, बाबा कहता है मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ, मेरे दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं। तो हम बेहद के नाम को स्मृति में रखें, हद के नाम नहीं। हाँ, ये जो हम असंतुष्ट होते हैं वो हद के नाम के कारण, छोटी छोटी बातों में मेरा नाम नहीं आया तो हम नाराज हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। जैसे एक कहानी भी कहते हैं ना कि एक बार विष्णु जी के पास, नारद जी उनके परम भक्त थे, उनके पास गए तो विष्णु जी एक डायरी पढ़ रहे थे, तो नारद जी तो बहुत क्यूरियस हैं, जिज्ञासु स्वभाव के थे, उनको समाचार जानने का बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो उन्होंने पूछा विष्णु जी को कि भगवान आप क्या पढ़ रहे हैं आज, तो विष्णु जी ने कहा कि ये मेरी डायरी है जिसमें वो नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, तो इसमें मेरा नाम कहाँ है। नारद जी भी तो भगवान को बहुत याद करते थे, इतने परम भक्त माने गए, तो मेरा नाम कहाँ है। तो डायरी दिखा दी विष्णु जी ने, देख लो तुम्हारा नाम कहाँ है। तो देखा उनका नाम सबसे ऊपर था। फिर दूसरे दिन जब गए तो देखा आज भी विष्णु जी डायरी पढ़ रहे हैं, लेकिन आज दूसरी डायरी थी। तो फिर पूछा भगवान आज कौन सी डायरी पढ़ रहे हैं आप, तो विष्णु जी ने कहा कि आज मैं वो डायरी पढ़ रहा हूँ जिनको मैं बहुत याद करता हूँ। तो फिर उनको जिज्ञासा हुई कि मेरा नाम कहाँ है। तो उन्होंने डायरी पकड़ी हाथ में तो देखा कि हनुमान जी का नाम उसमें सबसे ऊपर था और नारद जी का नाम सबसे नीचे था। तो किसको भगवान याद करते हैं, ये राज, किसको भगवान याद करते हैं, जो सदा हर समय हर परिस्थिति में बाबा से ड्रामा से संतुष्ट रहते हैं, वो सदा बाबा के दिल में समाये हुए हैं। तो हमें स्वयं भगवान याद करते हैं, कितना खुशी और नशे की बात है, हम ये भूल जाते हैं। फिर जब मान की बात आती है तो बाबा कहता है कि आज तक भी आप अपना मान देख रहे हो, आपके जड़ चित्रों की कितने मान से पूजा होती है, आज मंदिरों में मूर्तियों को कितना सम्मान दिया जाता है, कितना विधि पूर्वक उनकी स्थापना भी की जाती है, विधि पूर्वक पूजा भी की जाती है। तो इसका मतलब अगर जड़ चित्रों को इतना मान है तो जो चैतन्य में रहे होंगे उनको कितना सम्मान रहा होगा, चैतन्य में रहा है तभी तो वो मान मिला है। तो इस समय स्वयं भगवान ने हमें इतना ऊंचा स्वमान दिया है, अपने से भी आगे रखा है बाबा ने, ऐसे ही कहते हैं डबल पूज्य बनाया है। बाबा की निराकार रूप में ही पूजा होती है, बच्चों को तो साकार में निराकार दोनों रूप में पूजा होती है। और स्वमान क्या क्या है अगर आपसे पूछें तो आप अच्छी तरह बता सकते हो, कितने स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। उन्हें स्मृति में रख करके जो स्वमान में रहता है, बाबा ने कहा उसे स्वयं मान प्राप्त होता है, उसे मांगने से मान प्राप्त नहीं होता है ना। दो तरीके हैं, एक तो स्वमान में रहना है और दूसरा सम्मान देना है। सम्मान देने से मिलता है, मांगने से नहीं मिलता, और स्वमान में रहने से स्वतः मान मिलता है। तो स्वमान कितने ऊंचे ऊंचे हैं, हम वही कल्प पहले वाले भगवान के चुने हुए पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, हमारे जैसा पदम गुना भाग्य किसी का नहीं। और बाबा कहता है आप आत्माएं ऐसी हो जो हर कदम में पद्मों की कमाई क्षमा करने वाले हैं, पद्मा पदम पति हैं, richest in the world है। पद्मा पदम पति कहने का मतलब क्या है? richest in the world, जैसे शुरू में कहा ओम मंडली इज द richest in the world, तो ऐसे देखने में तो richest नहीं दिखते हैं, देखने में तो साधारण आत्माएं हैं, लेकिन हर कदम में पद्मों की कमाई हम ही जमा कर सकते हैं। वो कितने भी बड़े बिजनेसमैन हों, लेकिन एक कदम में पद्म की कमाई तो नहीं कर सकते। आज वो बिल गेट्स का नाम लेते हैं या मार्क जुकर का नाम लेते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया में माने जाते हैं, वॉरेन बफे जो अरबों डॉलर कमाते हैं हर साल, बाबा कहते हैं वो लोग भी एक कदम में पद्म की कमाई नहीं कर सकते अगर हमने बाबा की श्रीमत प्रमाण बाबा की याद में निमित भाव से कर्म किया है, तो हमारा वो हर कर्म पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। तो ऐसे नशे वाली बातें, प्राप्ति कराने वाली बातें अगर हम स्मृति में रखते हैं, कभी भी हम असंतुष्ट होते हैं मानो किसी भी बात से, तो बाबा कहता है ये बातें अपनी स्मृति में लाओ कि मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। अब प्राप्ति की बात स्मृति में नहीं लानी है, लेकिन बाबा ने कितनी बेहद की प्राप्तियां कराई हैं, उन सोमान को स्मृति में लाओ। या जैसे हम मुरली पढ़ते हैं, कोई बाबा की ऐसी मुरली उठाकर पढ़ो या कोई ऐसी क्लास सुनो, तो विस्मृति से स्मृति में आ जाएंगे, और जैसे ही स्मृति में आएंगे असंतुष्टता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो ज्ञान का राज समझ में आते ही नाराजगी पूरी तरह से खत्म। नाराज होना माना असंतुष्ट होना, ऐसे कहेंगे। और शान के लिए बाबा कहता है इतनी ऊंची शान आप बच्चों की है कि भगवान ने आपको ताज और तख्त नशीन बना दिया। दुनिया में सबसे ऊंची शान ताज पहनना और तख्त पर बैठना ही माना जाता है। आप बाबा के बच्चे दिल तख्त नशीन हो, भगवान के दिल तख्त नशीन होना, लेकिन सिर्फ एक शर्त है उसके लिए, सच्चे दिल पर साहब राजी। जो सच्चाई सफाई वाला है वो बाबा के दिल पर चढ़ जाता है, बाबा के दिल तख्त नशीन हो जाते हैं। और दूसरा, इस जन्म का ताज, सेवा का जो ताज है वो जन्म जन्मांतर राजाई का ताज मिलने वाला है। इतनी बड़ी शान है बाबा के बच्चों की। तो इन बेहद की स्मृतियों में रहने से जो हद के अप्राप्ति के कारण असंतुष्टता होती है वो सहज समाप्त हो जाती है। तो बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है संतुष्टता, और पर्सनालिटी है प्रसन्नता। ब्राह्मण बनकर के अगर संतुष्ट नहीं रहे तो ब्राह्मण बनने का फायदा ही नहीं है, और अगर संतुष्ट नहीं रहे तो प्रसन्न भी नहीं रह सकते, और जो स्वयं संतुष्ट प्रसन्न नहीं है वो दूसरों को भी प्रसन्न नहीं कर सकता। तो क्या करना है, क्या करना है, सदा एक कहते हैं ना, एक दिन संतुष्ट रहें और दूसरे दिन असंतुष्ट नहीं, लेकिन सदा संतुष्ट और प्रसन्न, ये ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा बहुत खुली दिल से हमें ये खजाना दे रहे हैं, तो उस खजाने को हमें अभी भी अनुभव में लाना है, खुद भी अनुभव में लाना है और दूसरों को भी अनुभव कराना है। ठीक है, ओम शांति।